तीन प्रकार से जन्म और मरण कर रहा है। जन्म के तीन भेद बताए गए हैं, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। पेज नंबर 55 पर है। सम्मूर्छन जन्म वाले कितने गति के जीव होते हैं यह बताया था, कितने गति के जीव, 55 पेज नंबर। मनुष्य गति और तिरेंचि गति, ये दो गतियाँ, ऐसी गतियाँ हैं जिसमें गर्भ जन्म भी है और सम्मूर्छन जन्म भी है। जिसमें गर्भ जन्म भी है और सम्मूर्छन जन्म भी है, कितने गतियों में, दो गतियों में, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक के जीव नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। एक बात ध्यान में रहेगी, एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक के जीव नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। सम्मूर्छन जन्म का मतलब वातावरण में रहने वाले पुद्गल परमाणुओं को ही ग्रहण करके शरीर बना करके जन्म लेना, ये सम्मूर्छन जन्म है। एकाग्रता से सुनेंगे तो सरल होता जाएगा विषय। कहां से कहां तक सम्मूर्छन जीव? एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक के जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, ये गर्भ से जन्म लेते नहीं। विज्ञान के अनुसार आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा कि चींटी अंडज है, पढ़ा है? चींटी अंडे डालती है, हाँ। चींटियां झुंड जब होती है ना, कभी निकलती हैं तो लाइन से अनुशासनबद्ध अपने अपने अंडियों को मुंह में रखकर दबा करके चलती रहती हैं। वो चींटियों के अंडियां हैं क्या? नहीं है, वो अंडे नहीं, उनके मल मूत्र में पैदा होने वाले सम्मूर्छन जीवों के योनि स्थान हैं, जो सफेद सफेद परमाणुओं से जुड़ करके तैयार होता है, और वो चींटी उससे अनुराग करती। जैसे गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया तो माता को कितना अनुराग होता है कि नहीं, वैसे सम्मूर्छन जीवों को भी जहाँ योनि स्थान होता है, जहाँ आत्मा आती है, जहाँ अपना साथी जन्म ले रहा है, जन्म लेने के उस स्थान पर जो सफेद वातावरण निर्मित होता है, कण उत्पन्न होते हैं, उनको मुंह में दबाकर ले जाने लगते हैं। इसको अंडे समझते हैं। तो अंडे क्या, चींटियां अंडे दे दी? नहीं, चींटियां अंडे नहीं दे सकती, मक्खियां अंडे नहीं दे सकती, मच्छर अंडे नहीं दे सकते। अंडे दे देंगे तो कौन सा जन्म वाला कहलाएगा? गर्भज हो गया फिर। ये एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक के जीव गर्भ से कभी भी जन्म नहीं लेते। अंडे आएंगे तो गर्भ से ही आएगा। तो ऐसा कभी देखा है क्या, एक मक्खी अंडा डाल रही है? नहीं देखा है। चींटी अंडा डाल रही है, लेकिन ले जाते हुए तो दिखाई देती, वो क्या है? उसी को सम्मूर्छन योनि स्थान बताया जाता है। सम्मूर्छन योनि स्थान कहाँ होता है? बाहर जगत में होता है, शरीर में नहीं, गर्भ में नहीं, बाहर जगत में होता है। जहाँ आत्मा आने के योग्य वातावरण बन गया, वहाँ पर सफेद सफेद पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पर शीत उष्ण तैयार हो जाएगा। ऐसा होते ही आत्मा वहाँ पर आकर के जन्म लेती। और वहाँ चींटी भी उत्पन्न हो गई, मक्खियाँ भी उत्पन्न हो गई, लाखों की संख्या में उत्पन्न हो सकती है। घर में कभी कभी देखते हैं एक भी चींटी नहीं होती और एकाएकी उत्पन्न हो जाती है। तो आपका घर बहुत अच्छा योनि स्थान वाला है इसलिए उत्पन्न होती वहां पर वातावरण मिलता है जन्म लेने के लिए। और थोड़ी बहुत शक्कर वगैरह फेंक दो तो और ज्यादा बनेगा वातावरण। उत्पन्न होने के बाद तो शक्कर के पीछे चींटियां दौड़ने लगती हैं, उनका वह आहार है। तो ये ध्यान में रखना है, एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक के जीव नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। ये न तो अंडे से जन्म लेते हैं, न जरायुज हैं, न पोत जन्म वाले हैं। अब दूसरी बात और ध्यान में रखना, जो जो सम्मूर्छन जन्म से जन्मते हैं वो नियम से नपुंसक ही होते हैं। तीन वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तीन वेद में से कौन से वेद वाले होते हैं? नपुंसक वेद वाले। समूर्छनानि नपुंसकानि, ये सूत्र आया है। कहाँ पर आया है? ये तत्वार सूत्र में, ये सूत्र आया है तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय में। समूर्छनानि नपुंसकानि, समूर्छन जीव नियम से नपुंसक जन्म वाले ही होते हैं। किंतु जो गर्भ जन्म वाले होते हैं वो तीनों वेद वाले होते हैं। स्त्री वेद वाले भी होते हैं, पुरुष वेद वाले भी होते हैं, नपुंसक वेद वाले भी होते हैं। नारकी नपुंसक वेद वाले होते हैं। मनुष्य गर्भ जन्म वाला है, पर्याप्तक मनुष्य गर्भ जन्म से जन्मता है। इनमें तीन वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। नारकी, सभी नारकी, प्रथम नरक से लेकर सप्तम तक के सभी नारकी जीव नपुंसक वेद वाले, एक ही वेद वाले होते हैं। और देवगति में देव, भगवान ने कहा है दो वेद वाले होते हैं, वहां नपुंसक वेद वाले जीव पाए नहीं जाते देवलोक में। स्त्री वेद वाले हैं, नपुंसक वेद वाले हैं, पुरुष वेद वाले, दो वेद ही हैं वहां। ये ध्यान में आया। किंतु ये तीसरी बात और ध्यान में रखना, कितने कितने सारी बातें ध्यान में रखोगे। जीव सिद्धांत है और जीव सिद्धांत को ऐसा ही सीखना पड़ता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखा, थोड़ा उसको, कभी इसको कभी उसको, ऐसा करते करते ही ज्ञान बढ़ेगा। पहले दिन पहली बार ही सुन रहे हैं तो ये समझ में आने वाला नहीं है। पहले दिन थोड़े समझ में आएगा, दूसरे दिन थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ेगा, तीसरे दिन और बढ़ेगा, चौथे दिन और बढ़ेगा। कंटिन्यूटी रखेंगे आने जाने का तो ये पुस्तक पूरी समझ में आ जाएगी। आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, परंतु आना तो डेली चाहिए पड़ेगा। पहले दिन आए, मंगलाचरण सुना और चले गए, समझ में नहीं आया हमको हमको समझ में नहीं आया तो समझ में ऐसा थोड़ी आएगा। आत्मा है, कभी दिखता नहीं, अमूर्त है। उस जीव तत्व की बातें हम सीख रहे हैं, जीव तत्व का सिद्धांत हम सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे तो सीखना होगा ना। कैसे भी लोग हों, आप वृद्ध हों, बालक हों, जवान, सबको समझ में आ सकता है, लेकिन एक बात रोज सुनना पड़ेगा। और वो समझ में आए या ना आए, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। सुनने की आदत डालेंगे तो ही समझ में आने वाला है। अभी ये नक्शा भी कुछ नहीं समझा है, अभी एक साथ समझाएंगे हम, थोड़ी बहुत कच्चा कच्चा समझाया है और पक्का एक दो दिन लगातार समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये चार्ट जीव संबंधित पूर्ण होने देते। समूर्छन जन्म के संबंध में जानकारी मिल गई। समूर्छन जीव नियम से नपुंसक होते हैं, नरक गति में एक ही वेद वाले होते हैं, देव गति में दो वेद वाले होते हैं, मनुष्य पर्याप्त तक तीन वेद वाले होते हैं, त्रिरंच पर्याप्त तक संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय इनमें भी तीन वेद हैं, पंचेंद्रिय में दो वेद हैं, संगी जीव असंगी जीव। संगी जीव यानी कौन सा जीव? मन सहित जीव। असंगी जीव यानी कौन सा जीव? मन रहित जीव। ऐसे कौन से जीव हैं? चिपकली। चिपकली असंगी है। कई पक्षियां हैं, पक्षी असंगी और कुछ संगी भी हैं। जलचर, थलचर, नभचर इन पर्यायों में संगी असंगी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के रागव मत्स्य ये सम्मूर्छन है, संगी है, पंचेंद्री है, और वेद कौन सा है? नपुसक वेद। उत्पन्न होता है वातावरण के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके, किसी ने जन्म नहीं दिया। इतना बड़ा मत्स्य वो सम्मूर्छन पर्याप्तक है, और ऐसे सम्मूर्छन होते हुए भी जीव को, नपुसक वेद होते हुए भी जीव को अधिक से अधिक गुण स्थान कितने प्राप्त हो सकते? पांच। सम्मूर्छन जीव को पांच गुण स्थान, नपुसक है पांच गुण स्थान, छठा गुण स्थान नहीं होता। कहां पर? हाँ, त्रिरंच में छठा गुण स्थान नहीं होता, पांच ही गुण स्थान होते हैं। अभी आप पंचम काल में यदि पुरुष हैं तो आपको कितने गुण स्थान प्राप्त हो सकेंगे? सात प्राप्त हो सकते। हाँ, सात, छठे सातवें गुण स्थान, आठवां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आठवां? सौनन चाहिए। कौन सा सौनन चाहिए? और हाँ, पहले के तीन सहनन, पहला, दूसरा, तीसरा, इन सहनन में से कोई एक सहनन चाहिए, तो आठवें गुणस्थान को भी हम चढ़ सकते हैं। आठ, नौ, दस, ग्यारह तक चढ़ सकते हैं। कौन सा सहनन हो? तो पहला छोड़ दो, पहला वाला छोड़ दो, पहले से तो हम मोक्ष भी जा सकते हैं, चौदह गुणस्थान पार कर सकते हैं। परंतु दूसरा हो तो कहां तक जा सकते हैं? ग्यारहवें गुणस्थान तक जा सकते हैं। तीसरा हो तो कहां तक जा सकते हैं? ग्यारहवें तक जा सकते हैं। अकरवा, ग्यारहवें तक जा सकते हैं। चौथा हो तो कहां तक जा सकते हैं? सातवीं तक जा सकते हैं। आज चौथा है क्या? नहीं है। आज चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, तो पांचवे सनन से कहां तक जा सकते हैं? सातवीं तक जा सकते हैं। ध्यान में रखना है एक एक बातें। चौथे से कहां तक? हाँ, चौथे सौनन से सातवें तक जा सकते हैं, पांचवें से भी सातवें तक जा सकते हैं, और छठे से भी सातवें तक जा सकते हैं। इतना मालूम हो तो आपको कोई प्रश्न करता है कि आज पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं है, तो आप ठीक उत्तर देंगे, आगम के अनुसार उत्तर देंगे। और आगम का ज्ञान नहीं हो तो आप क्या कहेंगे? हम महाराज को पूछ के आते। क्योंकि उन्होंने दीक्षा ली है और मोक्ष तो मिलता नहीं है, फिर क्यों लिया है? उन्हीं से पूछ के आते। तो ऐसा कहना पड़ता है। और आगम का ज्ञाता हो श्रावक, कितनी बड़ी बात हो जाती है। ऑन द स्पॉट उत्तर मिलता है जीव, और ऑन द स्पॉट आपसे उत्तर मिलने लग जाए तो कितने भव्य जीवों का कल्याण होगा। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, आचरण से पहले ज्ञान को महत्व दो, फिर ज्ञान आने के बाद आचरण को महत्व देते हैं तो वो समीचीन आचरण बन जाता है। ज्ञान नहीं और धर्म का आचरण करेंगे तो ऊपर ऊपर से होगा, भीतर से नहीं हो पाएगा, ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी। उस आचरण को देखकर ऐसा लगता है कि बड़ा व्यक्ति धर्मात्मा है, लेकिन धर्मात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? पूछा तो कुछ मालूम नहीं। आप त्यागी क्यों बन गए? ये पूछा तो कुछ मालूम नहीं, आपको क्या लेन देन इससे? हम त्यागी बन गए, बन गए, ये कहेगा। लेकिन त्यागी किस उद्देश्य से हम बनते हैं, क्या है, धर्म क्यों स्वीकार किया जाता है, कुछ भी मालूम नहीं रहेगा। तो अपन को ज्ञान चाहिए पहले। ज्ञान के माध्यम से बहुत बड़ा काम होता है, और ये ही ज्ञान चाहिए जो सीख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको सीखोगे तो हर प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता आपके पास आएगी। स्वयं का कल्याण तो होगा ही होगा, लेकिन पर का भी कल्याण करने की शक्ति आएगी। तो स्वयं का भी करना है, पर का करो या ना करो, लेकिन स्वयं का करना है। स्वयं का करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, और स्वयं का नहीं भी करना हो तो भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि पर का कल्याण करना हो एकांत से तो भी ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना कुछ होता नहीं है। चलते जन्म के दो भेद बताए, सम्मूर्छन जन्म और तिरेंच जन्म निकालो। गुणस्थान समझना है, पेज नंबर 55। तिरेंच में दो भेद बताया, यहां पर क्या लिखा है देख लो, पढ़ो। केवल कर्म भूमिज तिरेंच सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, और उनमें 850 म्लेच्छ खंडज तिरेंच छोड़कर 170 कर्म भूमि के आर्य खंडज सर्व सम्मूर्छन तिरेंच स्वामी हैं। इसके दो भेद किए गए हैं, सकलत्रय और विकलत्रय। सकलत्रय संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक सम्मूर्छन तिरेंच जलचर थलचर और नवचर, ये कल हो गया था। देखो ये सम्मूर्छन जीव है, तो पर्याप्तक जीव नीचे देखना, नीचे का मतलब वही एक नंबर दिया है वहां। पर्याप्तक को कितने गुणस्थान हैं? देखो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को 5 गुणस्थान दिए हैं, और निर्वृत्ति अपर्याप्तक को पहला दिया है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीव ही पर्याप्तक बनेगा, वो नियम से पर्याप्तक ही कहलाएगा। पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद पर्याप्तक, पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले उसको निर्वृत्ति अपर्याप्तक, और लब्धि अपर्याप्तक को कितना गुणस्थान? पहला। लब्धि अपर्याप्तक जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, द्वि इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, जो भी हो, उसका गुणस्थान पहला ही रहता है, उसका गुणस्थान पहला ही। अब ये निर्वृत्ति अपर्याप्तक सम्मूर्छन जीव को निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में नियम से पहला गुणस्थान ही होता है, किंतु पर्याप्तक अवस्था में आने के बाद 5 गुणस्थान होते, 1 से 5 तक हो सकते, होते ही ऐसा नियम नहीं। दूसरा असंगी की चर्चा है, दूसरे कॉलम में। असौध्नि पंचेंद्रिय पर्याप्तक सम्मूर्छन तिर्यंच जलचर थलचर नवचर। देखो नवचर को ब्राकेट क्यों दिया? हाँ कल बताया था ना, नवचर जीव असंगी जीव नहीं मिलते, समूर्छन, समूर्छन आकाश में उड़ने वाले, समूर्छन हो और आकाश में उड़ने वाले हो नहीं मिलते, पर्याप्तक हो नहीं मिलते पर्याप्तक, किंतु शास्त्र में उनकी चर्चा है पर नाम नहीं लिया। वो कौन सा जीव पर्याप्तक और समूर्छन होकर के भी नवचर है और आकाश में उड़ता है, ऐसा कोई नाम नहीं लिया है। उसको कितने गुण स्थान, देखो असंगी है, समूर्छन है, पंचेंद्री है और जलचर थलचर नवचर तीनों में पाए जाने वाला जीव है ये। इसके गुण स्थान पहला है, क्यों है पहला? हाँ, असंगी है, मन के बिना सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं है, ये नियम है। इसलिए असंगी को पर्याप्तक पंचेंद्रिय होने पर भी एक ही गुणस्थान, निवृत्ति अपर्याप्तक होने पर भी एक ही गुणस्थान और लब्धि अपर्याप्तक होने पर भी एक ही गुणस्थान। अब इधर चलते विकलत्रय में, द्विइंद्रिय पर्याप्तक सम्मूर्छन तिर्यंच और द्विइंद्रिय अपर्याप्तक सम्मूर्छन तिर्यंच, इनके पर्याप्तक अवस्था में गुणस्थान कितने? पहला है। और निवृत्ति अपर्याप्तक में, हाँ दूसरा हो गया। दूसरा क्यों हो गया ये विचारनी है। देखो एक उदाहरण देते हैं, हाँ वही ऊपर से नीचे विग्रह गति। कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य है, हाँ मरण करके अली बन सकता है कि नहीं, शीप बन सकता है, शंख बन सकता है कि नहीं, द्विइंद्रिय। तो शीप शंख आदि ये पर्याप्तक तिरंज हैं, द्विइंद्रिय पर्याप्तक। तो मनुष्य आ रहा है किस ओर? द्विइंद्रिय बनने की ओर। तो मरण कितने गुणस्थानों में होता है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में ना जन्म है ना मरण है, चौथे में मरण हो सकता है, चौथे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक मरण कहीं भी हो सकता है, इसके बाद बारहवें में मरण नहीं, तेरहवें में मरण नहीं, चौदहवें में मरण हो सकता है। और जिस गुणस्थान में जीव मरण करता है उस गुणस्थान सहित जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। जहां जिस गुणस्थान में मरण होता है उस गुणस्थान से जाता ही है, कहने के लिए कितने गुणस्थान हैं? पहला, दूसरा, चौथा, ये तीन गुणस्थान हैं। अगर इन गुणस्थानों में मरण हुआ तो इन तीन गुणस्थानों सहित ही निकलता है। पहले में मरण हुआ तो पहले गुणस्थान के साथ जाएगा, दूसरे में मरण हुआ दूसरे गुणस्थान के साथ जाएगा, तीसरे में मरण हुआ नहीं होता है ना, बहुत होशियारी से बैठे हैं क्या नहीं देखा तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, चौथे गुणस्थान में मरण हुआ तो चौथे गुणस्थान से ही जाएगा, पंचम गुणस्थान से मरण हुआ तो पंचम गुणस्थान सहित नहीं जाएगा। ये नियम है जीव का, ये जीव सिद्धांत है। पंचम गुणस्थान में मरण हुआ तो चौथे में आकर के जाएगा, नियम से चौथे से नीचे नहीं गिरेगा। पंचम में अगर मरण हुआ चौथे में आकर चला जाएगा, छठे में मरण हुआ चौथे में आकर चला जाएगा, सातवें में मरण हुआ चौथे में आकर चला जाएगा, ऊपर के किसी भी गुणस्थान में मरण हो जाए चौथे में आकर के चला जाएगा। किंतु चौथे गुणस्थान से नीचे उतर करके मरण हुआ तो मरण के दो स्थान हैं, दूसरा गुणस्थान और पहला गुणस्थान। दूसरे में मरण हुआ तो दूसरे सहित ही जाएगा, पहले में मरण हुआ तो पहले से ही जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ यही बता रहा है, हम ये बता रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में रहने वाला कोई मनुष्य, उसने क्या किया है? तिर्यंच गति का बंद किया है। क्या बनने वाला है? जा करके समुद्र में सीप बनने वाला है, सीप या शंख बनने वाला है। अब त्रिरंच आयु समुद्र में सीप या शंख बनने वाला है, अब बनने वाला है त्रिरंच आयु का बंद किया है और उसकी आयु कितनी है ये तो पढ़ के आए हैं, 12 साल की आयु है द्विइंद्री की है? तो उतने आयु को बंद करके वह तैयार है जाने के लिए। सम्यक दृष्टि था परंतु सम्यक दर्शन उसको बाद में प्राप्त हुआ, पहले त्रिरंच आयु का बंद किया, पहले त्रिरंच आयु का बंद किया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब त्रिरंच आयु का बंद किया है तो कर्म भूमि में जाने लायक त्रिरंच का बंद किया है, असंख्यात वर्षायुष को वह नहीं है, नहीं तो भोग भूमि में चला जाता, वो भोग भूमि में नहीं जाएगा, कर्म भूमि में जाएगा। कर्म भूमि समुद्रों का सीप, ये कर्म भूमि है, समुद्र में सीप होकर के जन्म लेगा। तो मान के चले वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक से च्युत हुआ, सम्यक तो से च्युत हो गया और दूसरे गुणस्थान में मरण हुआ, चौथे गुणस्थान के साथ मरण नहीं हो पाया, दूसरे गुणस्थान में मरण हुआ और वो चला गया। कहाँ पर चला गया? त्रिरंच गति में चला गया। कहाँ जा रहा है? केवल 12 साल के उत्कृष्ट आयु को बांधा है, क्या बनेगा? कर्म भूमि का त्रिरंच बनेगा, सीप बनेगा। अगर असंख्यात वर्षायुष का वर्षायु को बांध लेता और सम्यक दर्शन से च्युत होकर के भी मरण करता, दूसरे गुणस्थान में मरण करता, तो भी वह भोग भूमि में जाता, परंतु आयु ज्यादा नहीं बांधा, कम आयु वाला रहा और कम आयु वाला होने से चौथे गुणस्थान से च्युत होकर दूसरे में आया, दूसरे में आया, दूसरे से त्रिरंच गति में गया, सीप बन गया वहां का सीप। और कैसा सीप? स्वाति नक्षत्र का जब वर्षा हो रही थी तब वो ऐसा खुल गया था, उस समय स्वाति नक्षत्र का एक बूंद उसमें गिर गया और वो सीप बंद हो गया। क्या बन गया? मोती बन गया। कितना अहोभाग्य है, मोती बन गया। उसको लेकर के लोग श्रृंगार करते हैं, अपने शरीर अपने ऊपर पहन लेते हैं, सम्यक दृष्टि हो तो भी पहनते हैं और जीव मिथ्या दृष्टि हो तो भी पहन लेते हैं। वहां जाकर के शीप में मोती बना, उस जीव के शरीर के आश्रय से वह मोती तैयार हो गया, लेकिन सुख है क्या त्रिरंच गति में? नहीं, त्रिरंच सुखी नहीं हो सकता। इस तरह से चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में मरण कर जीव द्विइंद्री बनता है। यहां पर वही समझना है क्या लिखा है, पर्याप्तक द्विइंद्री को कितने गुणस्थान है? पहला। और निर्वृत्ति अपर्याप्तक में कितने गुणस्थान है? इसमें दो कथन है आचार्यों के, दो उपदेश हैं। पहला गुणस्थान ही रहता है ऐसा भी उपदेश है, और पहला दूसरा गुणस्थान भी रहता है ऐसा भी उपदेश है। तो पहला दूसरा गुणस्थान दोनों रहते हैं ये किसका उपदेश है? तो गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड आदि में दो गुणस्थान माने हैं, और धवला आदि ग्रंथों में एक गुणस्थान माना है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में द्विइंद्री जीव को दो दूसरा गुणस्थान और एक ही गुणस्थान, ऐसा दोनों मान्यताएं हैं। तो दोनों मान्यताएं स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आचार्यों का दोनों प्रकार से उपदेश है। तो बात यह हम समझा रहे हैं कि चौथे गुणस्थान से मरण हुआ और वो सीप बना, अपर्याप्तक अवस्था में वह दूसरे गुणस्थान को धारण करता है, और पर्याप्तियां पूर्ण होते ही पहले गुणस्थान में आ जाता है। ये मेन बात ध्यान में रहे। दूसरा गुण स्थान वहां रह करके प्राप्त किया क्या, ये प्रश्न हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, द्विन्द्रिय जीव को एक ही गुण स्थान रहता है जन्म से लेकर मरण तक, पर्याप्तक अवस्था में एक ही गुण स्थान, किंतु अपर्याप्तक अवस्था में उसके दो गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान कहां से आया, तो वहां जाने के बाद प्राप्त नहीं किया, यहां मनुष्य गति से ही ले गया है, ले गया हुआ दूसरा गुण स्थान रहता है। समझ में आ गया ना, ये भी है, एक 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 समझना है। ऐसा भी होता है, एक इंद्रिय में भी दो गुण स्थान बताया है, आएगा एक इंद्रिय में भी दो गुण स्थान है, मनुष्य कोई है और त्रेंच आयु का बंद किया, वनस्पतियों में जाने वाला है, और कैसा वनस्पति होना है उसको, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति एक शरीर और एक ही आत्मा, ऐसी पर्याय में जाने वाला है, निगोद में जाने वाला एक ही गुणस्थानवर्ती होता, प्रत्येक वनस्पति बनने वाला दूसरा गुणस्थान धारी भी हो सकता है। कहां से लाता है दूसरे गुणस्थान को, मरण के काल में जिस गुणस्थान में मरा दूसरे गुणस्थान में, उस गुणस्थान सहित ही जाता है। ऐसा नियम है कि हम जिस गुणस्थान में मरण करते हैं उसी गुणस्थान सहित निकलते हैं। कितने गुणस्थानों में मरण है, ये तीन, पहले से मरण हुआ तो पहले के साथ ही जाएंगे, दूसरे में मरण हुआ तो दूसरे के साथ ही जाएंगे, चौथे में मरण हुआ तो चौथे के साथ ही जाएंगे। अब ऊपर गुणस्थानों में मरण तो है, लेकिन उस गुणस्थानों से निर्गमन नहीं है, यानी निकलना संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों पंचम गुणस्थान से आगे के जीव उसी गुणस्थान में मरण कर उस गुणस्थान सहित क्यों नहीं जाते, तो ऐसा जाएंगे तो पंचम गुणस्थान नरक आदि में भी सिद्ध हो जाएगा, त्रिंच गति में भी सिद्ध हो जाएगा, एकेंद्रीय गुण पर्याय में भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वृत्ति कभी भी तीन गति में नहीं जाता, चारों गति में, यूं समझ लो, वृत्ति कभी भी व्रतों को लेकर के हाँ तीन गति में नहीं जाता। कहाँ कहाँ, नरक में नहीं जाता, त्रिंच गति में नहीं जाता, देव गति में नहीं जाता। वृत्ति मुनि महाराज के कितने, कौन से गुण स्थान मालूम है ना, छठा सप्तम। अब समाधि मरण करो, समाधि मरण करो, तो समाधि मरण तो छठे सप्तम में ही होता है पंचम काल में। किसी मुनि का मान लो सप्तम गुणस्थान में मरण हो गया तो सप्तम गुणस्थान निकलेगा क्या, सप्तम गुणस्थान सहित निकलेगा क्या? और मुनि का मरण हो रहा है तो कहाँ, किस गति में जाएंगे, वो देव गति में जाएंगे, नियम से देव गति में जाएंगे, अन्य गति नहीं है, मनुष्य नहीं बनेंगे, देव गति में ही जाएंगे। अब देव गति में जाते समय मरण सप्तम में हुआ है तो सप्तम के साथ चले जाएं, तो वहां निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में सप्तम गुणस्थान कहना पड़ेगा, लेकिन सप्तम गुणस्थान नहीं रहता। सप्तम गुणस्थान ये चारित्र वाला गुणस्थान है, छठा सप्तम पंचम, यहां से पंचम से चारित्र स्टार्ट होता है, और देव सभी व्रति रहते हैं कि अव्रति, अव्रति रहते हैं। देवायु का उदय होते ही हमारा गुणस्थान छूट जाता है, देवायु का उदय होते ही, जैसे हमने देवायु को बांधा, संलेखन मरण कर लिया, अब मरण के वक्त देवायु का उदय आएगा, मरने के बाद, मरने से पहले नहीं आएगा। और ऐसा क्या, मरने से पहले ही देवायु का उदय हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। मरण के बाद हमारा गुणस्थान एकदम चौथा हो जाएगा, देवायु का उदय और उसी के साथ चौथा गुणस्थान का उदय, दोनों एक साथ होते। इसलिए मुनि को मरण करने के बाद सप्तम गुणस्थान नहीं बच पाता, और फिर हम जो मरण की हुई संलेखना से मरण की हुई मुनि महाराज हैं उनको हम नमोस्तु बोलते हैं, उस आत्मा को नमोस्तु बोलते हैं। तो बोल सकते कि नहीं? असंजदम न वंदे, मरण के पश्चात संयमी रहते हैं क्या? हाँ? नीचे आ गए ना। हाँ, तो चौथे गुण स्थान में आ गए, एक सेकंद पहले सप्तम गुण स्थान में थे, अगला सेकंद असंयम का है, पिछला सेकंद संयम का है। किसको नमस्तु बोलोगे? दिगंबर अवस्था में ही संयम रहना संभव है। जब तक दिगंबर अवस्था है तब तक ही द्रव्य संयम रहता है और भाव संयम रहता है। विग्रह गति में है जीव, यहां पर शरीर से दिगंबर था, विग्रह गति में जा रहा है, आत्मा जा रही है, वहां शरीर नहीं है, तो उसको दिगंबर क्यों नहीं माना? शरीर नहीं है तो दिगंबर बनने के लिए शरीर भी चाहिए पड़ता है। केवल आत्मा ही और अच्छा है ना, शरीर परिग्रह और नहीं है, शरीर परिग्रह से भी मुक्त है। जाते समय शरीर कोई भी नहीं रहता, वहां जाने के बाद शरीर मिलेगा, देव शरीर मिलेगा देवलोक में, बीच में तो और अच्छी तरह से दिगंबर है, वो शरीर परिग्रह को भी त्याग करके जा रहा है, मुक्त भी नहीं, क्योंकि कर्म का बंधन है, कार्मण शरीर साथ में है, कार्मण शरीर साथ में है। देखो, जिसको अपन दिगंबर कहते हैं उसके दो मीनिंग ध्यान में रखना चाहिए, दो अर्थ ध्यान में रखना चाहिए। एक औदारिक शरीर से दिगंबर, वस्त्र रहित रहना, और वस्त्र से ही केवल रहित रहना, यही दिगंबर तो औदारिक शरीर का नहीं है। जीवन जीने के जितनी सामग्रियां हैं उनका त्याग होना आवश्यक है। कोई खाने पीने की चीज नहीं रख सकते, गाड़ी मोटर नहीं रख सकते, धन संपत्ति नहीं रख सकते, ये सब शरीर के साधन है कि नहीं? वस्तुएं, इन वस्तुओं में से एक भी वस्तु नहीं रखना, ये बाह्य दिगंबरत्व है। वस्तु 10 प्रकार की, क्षेत्र वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, पात्र, ये 10 प्रकार की वस्तुएं, ये जीवनोपाय के साधन है। मुनि जीवनोपाय के किसी भी साधन को रखते नहीं है, यदि रखते हैं तो वो शरीर से भी दिगंबर नहीं माने जाते। वस्त्र ही केवल उतारने से दिगंबर माने जाएंगे क्या? सोचो तो, अपन वस्त्र रहित तो को ही दिगंबर मानेंगे तो फिर बंदर तो वैसे ही वस्त्र रहित है, वो दिगंबर क्यों नहीं कहलाता, वो साधु क्यों नहीं कहलाता? तो उसके शेष परिग्रह हैं, बंदर के कौन से परिग्रह है? तो उसका परिग्रह परिवार है उसका, उसके बच्चे हैं, पालन पोषण करता है, उसके भी कोई माता पिता हैं, परिवार के बीच में रहता है, उनका त्याग है क्या? संकल्प पूर्वक त्याग करना पड़ेगा ये परिग्रह, और वह स्वामित्व भाव रहता है उसका, मैं जिस जंगल में रहता हूं ये पेड़ मेरा। हाँ, इस इलाके में कोई नहीं आ सकता, आप अपने घर में जो कुत्ते पालते हैं ना उनको देख लो, शिक्षा मिलती है उससे। मैं इस एरिया का मालिक हूं, चक्रवर्ती हूं, दूसरा कुत्ता आया तो भगा देता है वो, मैं जहां रहता हूं इस क्षेत्र पर आपका कब्जा नहीं चलता, तुम जाओ उधर जाओ अन्यत्र जाओ। तो कुत्ते को भी वस्त्र नहीं है, वो भी दिगंबर है, लेकिन इस प्रकार से स्वामित्व भाव है क्षेत्र आदि का, तो इसलिए दिगंबर नहीं है। और त्रिरंच गति में ऐसा दिगंबर बनना संभव ही नहीं। दसों प्रकार के वस्त्रों को परिग्रह को त्याग कर त्रिरंच जीव दिगंबर नहीं बन सकता शरीर से। और फिर अंतरंग दिगंबरत्व अलग बात है। दो प्रकार के दिगंबरत्व, बहिरंग और अंतरंग। अंतरंग में क्या दिगंबरत्व? तो अंतरंग का दिगंबरत्व यही कि किसी भी दस प्रकार के वस्तुओं से हमारी इच्छा स्वामित्व बुद्धि न हो, ये अंतरंग दिगंबरत्व। ये वस्तु मेरी है ऐसा संकल्प, ये दिगंबरत्व नहीं, इसका त्याग दिगंबरत्व। ये वस्तु मेरी नहीं है, ये संकल्प ही लिया जाता है ना, इसी को भावलिंग कहते, संकल्प को भावलिंग कहते हैं, और वस्तु से दूर होने को द्रव्यलिंग कहते हैं। द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों को ध्यान में रखना है। द्रव्यलिंग क्या चीज है? वस्तु से शरीर को दूर रखना, वस्तु को छोड़ना, दसों वस्तुओं को त्याग कर देना, संकल्प पूर्वक त्याग करना, ये द्रव्यलिंग। और भावलिंग क्या है? उन वस्तुओं से मोह ही नहीं होना, स्वामित्व बुद्धि का न होना, ये अंतरंग दिगंबरत्व। दोनों एक साथ होते हैं तो सातवां गुणस्थान, और केवल बाहर का दिगंबरत्व होता है साधु को तो छठा भी नहीं और सातवां भी नहीं, नीचे का कोई भी हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1 ये कोई भी हो सकता है। सम्यक दर्शन भी हो सकता है बाह्य दिगंबरत्व के साथ, परंतु भाव चारित्र, भाव लिंग, भाव संयम जिसको बोलते हैं, वो नहीं रहेगा। इसलिए क्या कहा है जैन ग्रंथों में, असंजदम न वंदे, असंयमी वंदनी नहीं है। मरने से पूर्व सातवां गुणस्थान था, अगला क्षण चौथा हो गया। उस चौथे गुणस्थान में जाने वाली आत्मा को संयमी कहकर नमस्तु करोगे? अब नमस्तु के लायक नहीं रहा, अब तो जय जिनेंद्र। हाँ, जीव सिद्धांत बारीक है, धर्म उस बारीक सिद्धांत को समझाता। चौथे गुणस्थान में चले गए तो जय जिनेंद्र, सप्तम में आ गए तो नमोस्तु। शब्दों में फर्क है। जय जिनेंद्र यानी तुम जीतो, अरे मैं जीत चुका था सब कुछ, असंयम को जीत चुका था, तो अब क्या हो गया? अब तो असंयम में आ गया हूं, तो जीता नहीं। पांच इंद्रियों को और षट कायिक जीवों को, जीवों की हिंसा को जीतना पड़ेगा। षट कायिक जीवों की हिंसा न करना ये प्राणी संयम है, और इंद्रियों को जीतना ये इंद्री संयम है। दोनों संयम जहां है वहां छठा गुणस्थान है, वहां नमोस्तु। और इन दोनों में से एक नहीं या दोनों नहीं तो भी असंयम है। और ये असंयम अवस्था जब आती है तो हमारा छठा सातवां गुणस्थान न रह करके या तो पंचम रहेगा, चौथा रहेगा, तीसरा, दूसरा, पहला, कोई भी हो सकता। सम्यक दर्शन से भी रहित है, सम्यक तो के आचरण से भी शून्य है, तो पहले गुणस्थान में रहेगा। तो हम ये बता रहे थे देवगति में जा रहे हैं, तो देवगति में गए और देवगति में गए हुए उस जीव की पूजा हो सकती है क्या? पूजा अर्चना आराधना, पंच परमेष्टियों की पूजा अर्चना आराधना तो हो सकती है, पर पंच परमेष्टि के स्थान में रहने तक हो सकती है? जब उस स्थान से नीचे आए तो नहीं हो सकती, चाहे जीवित अवस्था में आ जाए चाहे मरण के बाद आ जाए नीचे के गुण स्थानों में, पूजा अर्चना नहीं हो सकती, क्योंकि हम असयम की पूजा करके असयम पाना चाहेंगे क्या? संयम की पूजा करके संयम पाना चाहेंगे? हाँ? अर्चक क्या चाहता है? अर्चक गुणों को चाहता है, दोषों को नहीं चाहता। दोषपूर्ण स्थान, दोषपूर्ण आत्मा वंदनी अर्चनी नहीं होती, आदर नहीं होती, अनादर करने के लायक कोई भी जीव नहीं है, आदर नहीं होती है। कैसे? जय जिनेन्द्र, बस हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? आइए बैठिए, भोजन करिए, ये हो सकता है, और क्या करोगे? द्रव्य लेकर के अर्चन करोगे, आरती करोगे? आरती अर्चन वगैरह संयमी जीवों का ही होता है, मालूम नहीं था ये? पेशिक बहुत बताना पड़ेगा। वो विषयांतर ये असंजदम, भगवान की वाणी बताऊं, असंजदम न वंदे, असयमी जीव वंदनी नहीं होते, चाहे किसी भी गति के हों, मनुष्य हों, त्रेंच हों, देव हों, नारकी हों। देखो नरक में भी सम्यक दृष्टि नारकी जीव, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ जीव, श्रेष्ठ जीव वहां बैठा है, जिसको तीर्थंकर बनने का योग है, क्या उसकी पूजा करोगे? वो जिस पर्याय में है उस पर्याय में वो संयमी है क्या असंयमी, ये पहला विचार करो। नमोस्तु के लायक कौन होता है ये ध्यान में रखो। इंद्री को जीतने वाला और सब परिग्रह को छोड़ा हुआ जीव वंदनी अर्चनी होता है। मेन बेस, मेन मुख्य बात, मुख्य पॉइंट ध्यान में रखो विचार करने के लिए। नमोस्तु के योग्य कौन है ये प्रश्न आया तो अपने मन में उत्तर भी तो होना चाहिए। अपने मन में उत्तर है तो हम चलेंगे भी और बताएंगे भी, और उत्तर अपने मन में उत्तर ही नहीं है तो हम भी करेंगे और दूसरा भी जो कर रहा है और ठीक कर रहे हो कहीं तो अनुमोदना भी होगी। भविष्यकालीन तीर्थंकर को जो हम नमस्कार करते हैं ना, कर सकते हैं, करते हैं ना, वो उस पर्याय में आने के बाद की पर्याय को नमस्कार करते हैं, परंतु वो जो आत्मा अभी वर्तमान में जहां है उस वर्तमान पर्याय को नमस्कार नहीं है, भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, वो छोड़ो वहां तो है ही नहीं, अभी तो नरक में है। राजा श्रेणी कहाँ है? नरक में, उनको नमस्तु करते हैं अपन? तीर्थंकर प्रकृति बंधित, तीर्थंकर प्रकृति बंधित राजा श्रेणी के भावी तीर्थंकर नरक पर्याय युक्त तीर्थंकर आया, नरक पर्याय को अर्घ्य करोगे क्या? बोलो, नरक पर्याय पूजनी नहीं है, नरक पर्याय पूजनी नहीं है, और न ही मनुष्य पर्याय पूजनी है। हम ये बता रहे हैं कि वही जीव मरण करके तीर्थंकर पर्याय में जन्म लेता है। 16 स्वप्न पड़े, माता ने बालक को जन्म दिया, नमोस्तु कहोगे? पंच परमेष्टि में किसमें बिठाओगे उनको? बालक को, तीर्थंकर बालक को किसमें बिठाओगे? संयम के स्थान पर बिठाओगे कि असंयम के स्थान पर समझोगे? असंयम है ना, तो तीर्थंकर ही बताते हैं मैं भी यदि वस्त्रधारी हूं तो मैं भी संयमी नहीं हूं, मेरी पूजा वंदना करना तुम्हारा अज्ञान है। तीर्थंकर पर्याय में जन्म ली, सारी देवताएं जिनकी सेवा में उपस्थित होते हैं ऐसे तीर्थंकर भी वंदनीय नहीं है जब तक वो वस्त्रधारी रहते हैं और संयम धारण नहीं करते। तो हम वंदना किसकी करते हैं? संयम की वंदना करते हैं, हम ज्ञान की वंदना करते हैं, हम सम्यक्तु की वंदना करते हैं। परंतु ये भी ध्यान में रखना है, चारित्र रहित संयम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये वंदनीय है क्या? चारित्र रहित सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये वंदनीय है क्या? नहीं है। ये वंदनीय हो जाएंगे तो चार गति के सभी जीव नमोकार मंत्र में होते आज। नारकी भी नमोकार मंत्र में, जो जो सम्यक दृष्टि है ना वो सम्यक ज्ञानी तो है ही, तो नारकी जीवों को भी नमस्तु करना पड़ता और नारकी जीव सभी संयमी कहलाते। संयम है क्या वहां? तो नमोकार मंत्र में कितने संख्या को नमस्कार करते हम? 9 करोड़ मुनियों को नमस्कार करते हैं या असयमी जीवों को? तो मुनि कहने से तीनों है ना रत्नवान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तीनों रत्न हैं। तो तीनों रत्नों को नमस्कार करते हैं, आचरण दिखता है, सम्यक दर्शन का आचरण दिखता है, ज्ञान का आचरण दिखता है, चारित्र का आचरण दिखता है। मुनि के शरीर को नमस्कार भी नहीं करते, किसको नमस्कार करते? गुणों को नमस्कार करते, गुण वंदनी। देखो भगवान ने कहा है, जाति वंदनी नहीं, कुल वंदनी नहीं, शरीर वंदनी नहीं, और क्या वंदनी नहीं? जो भौतिक है, शारीरिक है, भौतिक वस्तु वंदनी नहीं, भौतिक परिग्रह वंदनी नहीं। वंदनी तो गुण होते हैं और गुण तीन हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। इसका आचरण जहां होता है वहां नमोस्तु शब्द का प्रयोग होता है और बाकी स्थान पर जय जिनेन्द्र, वंदामि, इच्छामि, वंदना इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ है। अभिषेक करता है, करता है वंदा में नहीं, जय जिनेन्द्र। वस्त्रधारी को जय जिनेन्द्र, चाहे तीर्थंकर बालक हूं, चाहे माता पिता हूं, कोई भी हूं, एक शब्द का प्रयोग जय जिनेन्द्र। क्योंकि असयम दशा है, संयम आने के बाद फिर नमोस्तु, फिर 8 द्रव्यों को लेकर के अर्चना भी हो सकती, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो जय जिनेन्द्र। तो कहाँ आया था विषय? विग्रह गति, विग्रह गति। दोइंद्री जीव विग्रह, दोरिंद्री पर्याय में विग्रह गति से कोई मनुष्य आए और चौथे गुण स्थान से च्युत हुए, मनुष्य पर्याय में रहते हुए चौथे गुण स्थान से च्युत हुए तो दूसरे गुण स्थान में आए और मरण हुआ और उस गुण स्थान सहित ही निकल गए, तो द्विइंद्री पर्याय में गए। तो निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में वहां अंतर्मुहूर्त के लिए द्वितीय गुण स्थान है और पर्याप्तियों को पूर्ण करने पर पहला गुणस्थान आ गया। इतना ही ध्यान में रखना है, ये जीव सिद्धांत है। एक एक बातें सिद्धांतों की पता चल रही, और ये बातें पता चले बिना तो फिर अंधकार ही है अपने जीवन में, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर धर्म जो करेंगे वो बाहर बाहर होगा, अंदर का तो होगा नहीं, और किया हुआ कोई काम में आएगा नहीं, सब व्यर्थ जाएगा वो। और कर भी लिया, थोड़ा सा शुभ परिणाम हो गए और थोड़ा सा पुण्याश्रय हो गया, पुण्य का फल मिल गया, पुण्य का फल स्वर्ग का सुख या इंद्रिय सुख मिल गया, हो गया खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, धर्म का लाभ तो हुआ ही नहीं। धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। तो अपन चलते द्वितीय गुणस्थान कैसे हुआ ये समझ लिया। लब्धि अपर्याप्तक द्विन्द्रीय जीव को पहला गुणस्थान ही है। अच्छा, विकलेन्द्री में तीन इंद्री भी है, तो त्रिइंद्री पर्याप्तक सम्मूर्छन तिर्यंच और त्रिइंद्री अपर्याप्तक सम्मूर्छन तिर्यंच, ये दो तिर्यंच अलग अलग है। ये पर्याप्तक को एक ही गुणस्थान होता है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला दूसरा होता है, तीन इंद्री बनना हो तो भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना, तीन इंद्रिय पर्याय में जा रहे हो तो भी हो सकता है। लब्धि अपर्याप्तक में एक ही गुणस्थान होता है। सकलेन्द्रिय अवस्था में एक मिनट है, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ, द्विइंद्रिय गुणस्थान समझ में आ गए, इधर की बात कर रहे हैं ना, सकलेन्द्रिय में वहां नहीं होता, क्योंकि द्वितीय गुणस्थान में मरण करने वाला जीव, द्वितीय गुणस्थान में मरण करने वाला जीव सम्मूर्छन बन करके जन्म ले रहा है। ये सम्मूर्छनों के ही भेद हैं सभी, और तिरंज के भेद हैं। और यहां पर पर्याप्तक हो तो पांच गुणस्थान हो रहे हैं, और निवृत्ति अपर्याप्तक हो तो पहला गुणस्थान हो रहा है, द्वितीय गुणस्थान नहीं होता। क्या कारण है ये प्रश्न आपने उठाया, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं आप, बहुत ही अंदर के प्रश्न उठाए, पकड़ लिया उनने, ये क्यों नहीं होता, ऐसा पकड़ना चाहिए तो चर्चा होती है। द्विइंद्रिय पर्याय में जाता हुआ दो गुणस्थान बता दिया, और पंचेंद्रिय बनने जा रहा है, और दूसरा गुणस्थान क्यों नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न उठा है, विचार करने लायक, और मुझे विचार करना पड़ेगा। वास्तव में पंचेंद्रिय बन रहा है और द्वितीय गुणस्थान क्यों नहीं, द्विइंद्रिय पर्याय से क्या बुरी पर्याय है क्या? तो अपन ये कह सकते हैं, क्या है कि जीव सम्यक्तो से रहित होकर के मरण कर रहा है, सम्यक्तो से रहित होकर के मरण कर रहा है, द्वितीय गुणस्थान के साथ जा रहा है। जा कहाँ रहा है, एक इंद्रिय और द्विइंद्रिय में, एक इंद्रिय में भी जा सकता है और द्विइंद्रिय में भी जा सकता है, पर पंचेंद्रिय में क्यों नहीं जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है कि पंचेंद्रिय नाम कर्म, जाति नाम कर्म, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म ये पुण्य प्रकृति है और पुण्य स्थान है जाति की अपेक्षा से, और द्विइंद्रिय विकलत्र ये पाप स्थान है, ये पुण्य स्थान और वो पाप स्थान, नीचे जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सम्यक्त का घात कर चुका है। एक ये हो सकता है उत्तर उसका, दूसरा ये भी उत्तर हो सकता है कि केवल ज्ञान में ये आया ही नहीं कि कोई भी जीव सम्यक से उच्युत होकर द्वितीय गुणस्थान में आकर वह पंचेंद्रिय पर्याय में जन्म ले रहा हो, कोई ऐसा केवल ज्ञान में नहीं आया, इसलिए केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी को जितना आया उतना ही बता दिया। प्रकृति में जो चलता है, सृष्टि में जो चलता है परिवर्तन, उसी का उपदेश देते हैं, जो चला ही नहीं कभी उसका उपदेश वो कैसे देंगे। तो पंचेंद्रिय पर्याय में जाते हुए जीव को द्वितीय गुणस्थान से मरण कर, द्वितीय गुणस्थान को और उस परिणाम वाले जीव को कभी उन्होंने देखा नहीं, केवल ज्ञान में आया नहीं, इसका अर्थ ये है वैसे परिणाम वाले जीव पाए नहीं जाते जो कि द्वितीय गुणस्थान में मरण करे और पंचेंद्रिय पर्याय में जन्म ले, सम्मूर्छन पंचेंद्रिय पर्याय में। नहीं नहीं, पूर्व में बंद किया है ना, पूर्व में बंद किया है, फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, फिर जा रहा है, ये तो पहले ही बता चुकी है। पहले उस मनुष्य ने क्या किया, त्रिंश आयु का बंद किया। आयु को बंद करते समय कितने आयु का बंद किया, तो 12 साल की आयु का बंद किया। तो 12 साल की आयु कहाँ है, द्विंद्री पर्याय में जा सकती, द्विंद्री जाति नाम कर्म का और 12 साल की आयु का बंद किया। फिर बाद में उस मनुष्य को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। सम्यक दर्शन के होने में कोई भी दिक्कत नहीं, संयम नहीं होगा, ये गारंटी है। हाँ, भोग भूमि में, हाँ, नहीं, द्विंद्री का बंद किया है उसकी चर्चा चल रही है। मनुष्य ने मनुष्य ने सकलेंद्री का बंद किया, त्रिंच का बंद किया, त्रिंच आयु का बंद किया, तो आयु को कितना बंद किया इस पर जाएगा ना, कितने साल का बंद किया, असंख्यात वर्ष का या संख्यात वर्ष का। संख्यात वर्ष का बंद किया है और द्वितीय गुण स्थान में मरण हो रहा है, तो द्विंद्री पर्याय में जन्म ले सकता है, पंचेंद्री में भी ले सकता है, क्योंकि ये कर्म भूमि का ही पंचेंद्री जीव है समूर्छन। भोग में तो समूर्छन पंचेंद्री होते नहीं, ये पंचेंद्र में भी बन सकता है, लेकिन बनता नहीं, ये केवली भगवान का कहना है। क्यों नहीं बनता, तद योग्य परिणामा भावात, उस योग्य परिणाम के अभाव के कारण वह समूर्छन त्रिरंचो में पैदा नहीं होता। यानी जिनको त्रिरंच गति में द्वितीय गुण स्थान के साथ जाना है, उनको पंचेंद्री बनना संभव नहीं है। उनको तो या तो एक इंद्री बनना है या तो द्विंद्री बनना है। निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में द्वितीय गुण स्थान नहीं रहेगा। सकलेंद्री का बंद किया है, समूर्छन पर्याय का बंद किया है, पूर्व कोटि का आयु भी हो सकती है, किंतु यहां से छूटते समय सम्यक दर्शन से छूट गया और द्वितीय गुण स्थान में आया सम्यक का घात करके, और फिर सकलेंद्रीय पर्याय में जाएगा नहीं। जाएगा तो वो या तो द्विंद्रीय में जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, ये ऐसा नहीं बता रहे हैं कि सकलेंद्र को बंद करके द्विंद्रीय में जाएगा, ऐसा नहीं। जिसने द्विंद्रीय का ही बंद किया तो द्विंद्रीय में जाएगा, लेकिन सकलेंद्रीय जिसको बंद हो गया है उसको द्वितीय गुण स्थान में मरण नहीं होगा, ये नियम है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान में ऐसा आया है। क्या आया है? सकलेंद्री में जाने वाले जीव को सम्यक दर्शन का घात हो जाए तो पहले गुणस्थान के साथ ही मरण होगा, पहले गुणस्थान के साथ ही मरण होगा, पहले गुणस्थान को लेकर के जाएगा। तो वहां निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला हो सकता है, द्वितीय नहीं होगा, किंतु द्वितीय गुणस्थान के साथ मरण ही नहीं है बता रहे हैं, जो सकलेंद्रिय को बंद किया है। तो क्यों नहीं? उस योग्य परिणामों का अभाव है। यानी जिसको उस पंचेंद्रिय पर्याय का बंद हुआ है उसको द्वितीय गुणस्थान योग्य परिणामों की उत्पत्ति नहीं होती है, यही जीव सिद्धांत है। हम जीव सिद्धांत को ही पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, तो ये सिद्धांत है। एक को होता है और एक को नहीं होता, यही सिद्धांत है। किसका? अंतर्मुहूर्त छावली, अंतर्मुहूर्त कह सकते हैं, अंतर्मुहूर्त काल तो है द्वितीय गुण स्थान का, छावली का अंतर्मुहूर्त। हाँ, एक समय से लेकर छावली तक उसका जगन्योत्कृष्ट काल है। उस काल से कोई मतलब नहीं, परिणाम क्यों नहीं होते ये महत्वपूर्ण बात है। परिणाम होते नहीं है इसलिए द्वितीय गुण स्थान में नहीं आता। हाँ, उसके सम्यक तो घात, यानी यूं कह सकते हैं, पहले गुण स्थान में आने वाला जीव क्षायोपशम सम्यक दृष्टि नहीं होता, द्वितीय गुण स्थान में आने वाला जीव क्षायोपशम सम्यक दृष्टि नहीं होता। तो कौन सा सम्यक दृष्टि होता है? प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि हो सकता है। प्रथमोत्सव सम्यक्त को प्राप्त किया और अंतर्मुहूर्त पहले छूट गया और छह आवली, एक आवली से लेकर छह आवली काल तक शेष रहा था और मरण हो गया। मरण हो गया तो द्वितीय गुण स्थान में आएगा ही आएगा, आए ये नियम नहीं, आएगा। और काल पूर्ण होने के बाद अगर मरण होता है तो पहले में आएगा डायरेक्ट। काल पूर्ण होने से यानी सम्यक्त का काल जो अंतर्मुहूर्त का है, उपशम सम्यक्त का काल अंतर्मुहूर्त है, उस अंतर मुहूर्त में से छह आवली काल जब अंतिम बचता है उस समय अगर मरण हो गया तो द्वितीय गुण स्थान में आएगा। अगर पूरा ही खत्म करके आ रहा है तो पहले में आएगा, ऐसा जीव सिद्धांत है। क्या क्या याद रखोगे? एक एक याद रखते जाओ, समझ में आएगा। घबराना नहीं कि हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कैसे करें। एक दिन सुनने से, दो दिन सुनने से, तीन दिन हैमरिंग होता जाता है, आठ दिन में तो समझ में आने वाला ही है। नहीं आता ऐसे कोई बात नहीं, आएगा, आता है। ठीक है, जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। नक्शा के बारे में आपको अभी कच्चा समझ में आया है, पक्का समझाएंगे लगातार, दो दिन तीन दिन तक चलेगा, सभी नक्शाएं एक साथ समझ